ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 चैप्टर 1 श्लोक संख्या 21। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हम लास्ट 3 दिन से इन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। ये श्लोक कंठस्थ करना है सबको। भूतानाम यो संवास कृपायाम इव सुव्रते दैवेन एकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। तो भाषांतर, हे माता, किसी भोजनालय या प्याव में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इस प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। ट्रांसलेशन फिर से पढ़ता हूँ। हे माता, किसी भोजनालय या प्याव में अनेक राहगीर पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के बाद अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इस प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं, किंतु बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार वे अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु एक राक्षस होते हुए भी वैदिक तत्व ज्ञान में पारंगत है, तो अपनी माता को, भाभी को, भतीजों को ये सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनका भाई हिरण्याक्ष का श्री भगवान ने वध किया, तो उनके कुटुंब को वो सांत्वना दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ इस श्लोक में, भूतानाम यह संवास। भूतानाम हर जीव, भूत, यह इस संसार में संवास वास वास करते हैं। संवास अर्थात इस संसार में हर जीव साथ में आते हैं, पास में आते हैं, संबंधी बनते हैं, कौटुंबिक। और दैवेन एकत्र नीताना, अपने अपने कर्मों के मुताबिक, दैव दैवेन एकत्र, कुटुंब में सब जीव एक दूसरों का संबंधी बन के आते हैं। कोई माँ बनती है, कोई बेटा बनता है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई पुत्री पुत्र, बहू सास ससुर बनते हैं अपने अपने कर्मों के मुताबिक। एकत्र नीताना, एकत्र किए जाते हैं दैव से, भाग्य से, कर्मों से। और उन्नीतानाम स्वकर्म भी, और अपने अपने कर्मों के मुताबिक सब बिछड़ते हैं, सब छूटे पड़ते हैं, अलग होते हैं, मरते हैं अलग अलग समय। तो उदाहरण सुंदर दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि प्रपायाम इव सुव्रते, हे भद्रे, हे सुव्रत, जैसे कोई भोजनालय या प्याव, ठंडा जल पीने का प्याव गर्मियों में कई लोग रखते हैं, जहाँ जिसको तृष्णा हुई है वो पानी पीने के लिए सब साथ में वहाँ इकट्ठे होते हैं, और पानी पीने के बाद अपने अपने रास्ते पकड़ते हैं। जैसे कोई भोजनालय हो तो वहां भी सब लोग इकट्ठे होते हैं और भोजन किया, पानी पिया, अपने अपना रास्ता पकड़ते हैं। तो उसी तरह जीव एकत्र कुटुंब में होते हैं। तो कर्मों की गति यहाँ बता रहे हैं, दैवे ने एकत्र नीता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी। तो कर्मों की गति गहन है। अगर कोई कुटुंब में हमें कोई दुख देता है तो हमने उनको दुख दिया होगा, या तो इस जन्म में वो हमें दुख दे रहा है, अगले जन्म में हम उनको दुख देंगे, या तो अगर हमें पॉजिटिवली लेना है तो फिर दुख इसलिए है कि हम श्री कृष्ण की ओर चले। आगे बहुत फिलोसॉफी हमने पढ़ ली। वैसे जीव को कोई दुख नहीं होता, जीव को कोई भी दुख नहीं होता। जीव सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह, सनातन, संपूर्ण ज्ञानमय और संपूर्ण आनंदमय। लेकिन दुख महसूस क्यों होते हैं? क्योंकि हम डुअल, द्वंद, मैं हूं आत्मा और द्वंद मैं हूं शरीर, ये दो द्वंद हो गए। मैं आत्मा भी हूं, या तो मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं, हूं आत्मा समझ बैठा शरीर, द्वंद हो गया। इसलिए दुख, दुख का कारण ये अज्ञान था। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का स्वभाव है आनंदमय, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तो आत्मा आनंदमय है, सनातन आनंदमय है, तो दुख कैसे हुआ, सुख कैसे हुआ? और सुख और दुख आता जाता है। तो इसीलिए दुख होता है हमें, क्योंकि हम द्वंद्व के स्तर पर हमेशा रहते हैं, डुअलिटी, मैं शरीर हूं। तो ये गलत फहमी, मैं शरीर हूं, गलत, गलती हो गई, हम भूल कर बैठे क्या, मैं शरीर, तो दुख शुरू हो गया, क्योंकि शरीर का दुख हमें लगा। तो दुख हमें कैसे होता है? जैसे आपकी 50 लाख की गाड़ी है, आप गाड़ी से बहुत आसक्त हो और गाड़ी ड्राइविंग करते हुए कोई ट्रक ने आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करके खत्म कर दी, तो आपको बहुत दुख होता है। बाहर जैसे आए गाड़ी के, ट्रक वाले को गालियां देने लगे, यू रास्कल हिट मी, यू हिट मी, यू हिट मी। तो जो ओनर है उनको दुख हुआ, लेकिन फुटपाथ पे जो खड़े हैं वो हंस रहे हैं, बहुत तेजी से जा रही थी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, तो वो हंस रहे हैं, उनको आनंद हो रहा है और हमें दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी के साथ एक रूप हो गए, हम गाड़ी के साथ आसक्त, गाड़ी में आसक्ति, तो गाड़ी का दुख हमें लगा। वैसे हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को, तो गाड़ी का दुख हमें, हमें तो कोई दुख है ही नहीं, लेकिन गाड़ी में आसक्ति हमें दुख देती है। उसी तरह इन शरीर में आसक्ति हमें दुख देती है, शरीर का दुख हमें लगता है, गाड़ी का दुख हमें लगता है। तो ये कर्मों की गति है, कर्म, कर्मों की गति। कर्म ही बोधव्यम, अकर्म ही बोधव्यम, विकर्म बोधव्यम, गहना कर्मणा गति ही। कर्म विकर्म अकर्म बोधव्यम क्या है, जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, कर्मों की गति गहन है। तो विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों में फॉरबिडन, शास्त्रों में वो कर्म करना मना है, उनको बोलते हैं विकर्म। जैसे चोरी, लूटपाट, झूठ, अननेसेसरीली किलिंग, ड्रिंकिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये सब पाप कर्म है, विकर्म है। और कर्म वो है जो शास्त्रों में करने के लिए कहा है, जैसे पुण्य कर्म है, दान, तप, तीर्थ, वगैरह कई कर्म करने चाहिए, कर्मकांड। तो कर्मकांड एक कर्म है और अकर्म वो कर्म है जो न स्वर्ग देखा न नर्क। विकर्म गति है नर्क और कर्मों की गति है स्वर्ग, भौतिक सुख। और अकर्म का अर्थ है न नर्क न स्वर्ग, भगवान श्री कृष्ण का धाम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा। और सबसे ऊंचा तरीका है सेवा का, मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अकर्म है जिनका न भौतिक लाभ न भौतिक पाप, आध्यात्मिक, जिससे हमें श्री कृष्ण का दान, श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण के भक्तों का प्रेम मिले। तो ये अकर्म है। गहना कर्मणा गति ही, कर्मों की गति गहन है, इंट्रिकेट, वेरी इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स। हिंदी कर्मों की गति गहन कुछ समझ में नहीं आ सकती, ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी। गहना कर्मणा गति, इसलिए कर्मों की गति बोधव्य हमें जाननी चाहिए। तो तीन प्रकार के कर्म हैं। एक है क्रियमाण कर्म, जो हम हर रोज करते हैं क्रियमाण, और कर्म करने के बिना हम रह भी नहीं सकते। न च तस्मान क्षणम अपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत, जीव एक क्षण बार भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। नींद में भी हमारा श्वास उच्छ्वास चलता रहता है, मन कहीं भागता दौड़ता है, कर्म करते रहते हैं। तो एक क्रियमाण कर्म है जो हम करते हैं हर रोज क्रियमाण, और वो क्रियमाण कर्म संचित कर्म बनता है, संचय होता है, स्टोरेज। और वो स्टोर किया हुआ कर्म फलीभूत होता है, अर्थात हमारे समक्ष आता है। अभी जो हम भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो बाहर आते हैं उनको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। उदाहरण दिया गया है, एक साइलो हो, साइलो का मतलब है कोठी, अनाज स्टोर करने का एक बड़ा स्टोरेज, जिसमें ऊपर से दाने डाले जाते हैं और दानों का संचय होता है, और नीचे एक बारी छोटी सी खिड़की होती है, तो खिड़की खोलने पर अनाज बाहर आता है, दाने बाहर आता है। तो जो डाल रहे दाना वो क्रियमाण कर्म करके हम स्टोरेज में डाल रहे हैं, स्टोरेज हो रहा है, संचित कर्म। क्रियमाण संचित और संचय हुए हुए कर्म नीचे वाली खिड़की से बाहर आते हैं प्रारब्ध कर्म, उनको बोलते हैं प्रारब्ध। तो अभी हम जो भोग रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म टालना बहुत मुश्किल है। वंस इट इज फ्रक्टिफाइड, अगर वो फलीभूत हो गए कर्म, प्रारब्ध कर्म, तो उनको टालना मुश्किल है। लेकिन अगर बलवान कोई भक्त, योगी नहीं, भक्ति योगी कोई बलवान, अमरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे बलवान भक्त, पांडव, हनुमान, ऐसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद, मृत्यु को रोक लिया प्रभुपाद जी ने, दो दिल के दोहरे अरबी समुद्र में, दो दिल के लगातार, दो दिल के दोहरे, न हॉस्पिटल, न मेडिसिन, न दवाई और न नर्स, न कोई, कोई भी नहीं साथ में, तो मृत्यु को रोक लिया। जैसे महासती अनसुया, अनसुया ने सूर्य को रोक लिया, पति मरने वाले थे सूर्यास्त। तो ऐसे बलवान जीव जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो प्रारब्ध कर्म को चेंज कर सकते हैं, प्रारब्ध कर्म। या तो तीव्र भक्ति, बेहोश और बेवश होके कृष्ण को हम पुकारें, तो प्रारब्ध कर्म हम चेंज कर सकते हैं। तो प्रारब्ध कर्म चेंज करना मुश्किल है, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति शुद्ध भक्ति सब कर्मों को जला के भस्म कर देती है। कर्माणि निर्दहति, निर्दहति दहति निर्दहति कंप्लीटली, निर्दहति मतलब कंप्लीटली बर्न, कंप्लीटली जो कर्म का जो बीज है वो भी भुना जाता है, बाद में वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो उसी तरह शुद्ध भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से, 16 माला से, 4 नियमों से हम प्रारब्ध कर्म को भी जल के भस्म कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति से कर्माणि निर्दहति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम मा सुच, मा सुच घबरा मत, हे अर्जुन घबराओ मत, मा सुच क्या, एक मेरे शरण में आओ, हजार लोगों के शरण में नहीं, मेरा शरणागति, मेरे एक की शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान का अर्थ है हिंदू धर्म, मनमाने धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म, राजा धर्म, कई धर्म, हर धर्म को छोड़ो। और सबसे बड़ा उत्तम धर्म क्या है, मेरे एक के शरण में आना, श्री कृष्ण के शरण, शरणागति स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा धर्म है, मेरे एक के शरण में आ। तो क्या, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, पापे भ्यो नो कर्म, कोई भी प्रकार के कर्म भगवान ले लेते हैं, भगवान सब कर्म हमारे जला के भस्म कर सकते हैं। ए किंग कैन नो रॉन्ग, किंग कोई भी कैदी है उनका सेंटेंस, उनकी कैद की सजा जीरो करके कैद से बाहर ला सकता है, इवन दो कैद की सेंटेंस उनका समय ज्यादातर कैद में रहना हो, फिर भी राजा मुक्त कर सकता। इसी तरह राजाधिराज कृष्ण, अहम त्वाम सर्व पापी भ्यो, लेकिन पहले शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे एक के शरण में आ। तो मैं आपको क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म सब कर्म फिनिश्ड, इसलिए भक्त हंसता हुआ मृत्यु के सर पर ठोकर लगाता हुआ भगवत धाम पहुंचता है, हंसता हंसता। हमारे इस्कॉन में कई कई मून, मैनी मून्स बुक, मैनी मून्स, कई मून्स हैं, और मैंने विटनेस भी किया है, विटनेस। तो शरणागति किसकी, श्री कृष्ण की ही और किसी की नहीं। माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम सब पापे भी, सब कर्म खत्म। तो ये कर्मों की गति गहन है, कर्मनो संगाति रणमरु कोई नथी, मेरा कर्म का साथी मेरा कोई नहीं है। एकज गाय के दो बछड़े, एक गाय के दो बछड़े, एक बछड़ा बना शिवजी का पोठिया, शिवजी का बैल बना, और दूसरा बना घाचीड़ा ने घेर, दूसरा घाचीड़ा ने घेर, दूसरा बैल कोलू पिलने वाले कोली के यहाँ कोलू पिलता है, 12 घंटा कड़ी मजूरी, एक गाय के दो। ए लख्याओ ना जुदा जुदा लेख, लख्या लिख्या, लिख्या लिखना, जुदा जुदा लेख, दोनों बैल का भाग्य अलग अलग लिखा गया था, लिखा होना जुदा जुदा लेख। मीरा एक पर्वत के दो टुकड़े पत्थर, एक की बनी प्रभु जी की मूर्ति रे, 56 भोग, मुझे भगवान आशीर्वाद दो, प्रेयर्स भगवान से हम, और एक पर्वत ना एक जगह से दो टुकड़े पत्थर और दूसरा धोबीड़ा के घाट, धोबीड़ा के घाट धोबी उनके ऊपर कपड़े झिकता है, पिटाई करता है। एक पर्वत के दो पत्थर, एक की बनी प्रभु जी की मूर्ति रे, दूजा घाचीड़ा ने घेर तेली के घेर दिखा उन जुदा जुदा लेख, दोनों के लेख दोनों के कर्म अलग अलग, प्रारब्ध कर्म अलग अलग, सब कुछ अलग अलग। एक माँ के दो बेटे, एक बेटा कुशाग्र बुद्धि और दूसरा बेटा ठन ठन गोपाल। तो ये है दैवेन एकत्र नीता नाम उन्नीता नाम स्वकर्म भी, और प्रपाया मिव सुव्रते परब प्याव में जैसे इकट्ठे होते हैं वैसे कुटुंबीजन इकट्ठे होते हैं, एक दूसरों को दुख देते हैं या सुख देते हैं, बाद में अंत में उन्नीता नाम स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों से सब बिखर जाते हैं। ये कर्मों की गति है। ये आगे हम बढ़ते हैं, मैं सारी कथा कहने वाला था लेकिन एक कर्मों की गति में हम रुक गए। ये श्लोक सुंदर है, आप सब कंठस्थ करोगे। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, जब यम राज इस तरह छोटे बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवंत है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। प्रत्येक वस्तु नाशवंत है, शरीर हमारा नाशवंत है। अंतवत्तु इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण, शरीरिण आत्मा ये नित्य है, नित्य उक्त शरीरिण आत्मा, शरीर शरीरिण आत्मा शरीरी। तो अंतवत्तु इमे देहा, ये जो देह है ये अंतवत्तु है, उनका अंत आता है, देह मरता है लेकिन शरीर नित्य है। तो आप ये मरे हुए हिरण्याक्ष का शोक मत करो। तो ये यमराज, अत सोचत मा युयम परम च आत्मानम एव वा क आत्मा क परो वात्र स्वीय पारक्य एव वा, अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। शरीर के लिए कुछ शोक, शरीर को दुख सुख, शरीर को मरना जीना, तो शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन है, क्या मेरा है क्या उनका है। भगवद गीता की शुरुआत आत्मा से, और यहाँ भी चार लोग आत्मा की बात एक वृत्तांत में कह रहे हैं। एक तो हिरण्यकश्यपु, उनकी माता और संबंधियों को आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, बाद में वो कोट कर रहे हैं कि यमराज ने भी ये बात कही थी सुव्रत को, और बाद में उसमें से उदाहरण निकाल रहे हैं कि एक वक्त क्या हुआ कि कलिंगा बर्ड्स दो पक्षी थे, एक नर और एक मादा स्त्री, तो दोनों पक्षी साथ में मौज कर रहे थे, तो इतने में एक बहेली आया, तो उनने अपनी जाल फैलाई दाना डाल के, तो उसमें मादा पक्षी जो स्त्री पक्षी था फीमेल पक्षी, तो वो जाल में फंस गए, तो रो रही है रो रही कर, रो ककर बहुत हुआ कि अभी ये मरने ही वाली है, बहेलिया उनको हंटर उनको मार देगा। तो जो पक्षी था उनका पुरुष पक्षी या जो कहो मेल पक्षी, तो वो रो रहा है, मेरी हाय मेरी पत्नी, हाय कैसे बेचारी पकड़ा गई और अभी मरने ही वाली है, कृष्णा मेरा दैव टूटा, मेरा दैव कितना खराब है, हमारा बिच्छो हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो पक्षी रो रहा, मेरा शरीर मेरी पत्नी मेरी मेरा मेरा। तो इतने में ही वो जो पारदी हंटर था उसने उन पक्षी पर बाण चलाया और वो जो पत्नी के लिए जो रो रहा था उनको मार दिया। तो ये वृत्तांत से क्या कह रहे हैं यहाँ कि ये दोनों पक्षी आत्माएं हैं और दोनों को शरीर से एक दूसरों से आसक्ति है और इसलिए एक दूसरों के लिए रो रहे हैं, लेकिन मेरा भी मृत्यु आ रहा है, उनके पीछे पीछे मेरा भी मृत्यु होने वाला है, वो कोई नहीं सोचता। तो प्रभुपाद जी उनके परपोर्ट में लिखते हैं कि अहनी आहनी भूतानि गच्छन्ते अमलायनम श्रावलक्ष्मी विंशति किम आश्चर्यम परम। ये वसु युधिष्ठिर महाराज से सवाल करता है। युधिष्ठिर महाराज तभी पानी भर सकते हैं वहाँ, ये महाभारत की कहानी है लंबी, तो पहले सवाल का जवाब दो, बाद में ये जल तालाब से आप ले सकते हो। तो युधिष्ठिर को ये सवाल पूछा गया, यक्ष सवाल कर रहे हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति अमलायनम, कि हर रोज अपने आजू बाजू इधर गिधर हम देखते हैं पशु पंछी चिड़िया चीटी संबंधी पड़ोसी मर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, मेरा मृत्यु कभी नहीं आने वाला, मेरा स्थावरा मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा, तो उससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग मरे चाहे लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो ये बड़ा आश्चर्य है। तो हमारी मृत्यु बिल्कुल हमारे बगल में खड़ी है, इसीलिए हमें अभी से समझ जाना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन में अत्यंतिक कल्याण का एकमात्र तक, वो तक गवानी नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन में ही हम श्री कृष्ण भक्ति कर सकते हैं और वो भी शॉर्ट, और वो भी मृत्यु बिल्कुल बगल में खड़ा, ऐसा सोचना चाहिए, और भगवान भी हमारे हृदय में स्फुरित है, तो शाम में समझ जाना चाहिए और अभी से हमें श्री कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए। और लगने का सबसे सरल सर्वोत्तम तरीका है हरे कृष्णा सबसे सरल तरीका, 16 माला डे, और कोई नियम नहीं, कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं, कोई भी प्रकार का कुछ भी, बस नाम जपते जाओ, काम करते जाओ, खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। और इनमें जो मस्ती है वो कभी उतरती नहीं, इन शुद्ध भक्ति में जो मस्ती है, आनंद है, सुख है, प्रेम है, कभी उतरता नहीं। हम भक्त लोग हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, हमेशा भगवान के प्रेम में, भक्तों के प्रेम में, आनंद में, उत्सवों में, दिन में 4-4 उत्सव, संत को सदा दिवाली, दिवाली मीन्स उत्सव, संत को साधु को महंत को, संत महंत साधु, संत को सदैव सदैव, हमेश दिवाली, हमेश उत्सव। प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन में हर रोज उत्सव, अगर उत्सव जैसा नहीं लगता है तो पैदा कर लो, उत्सव बना लो। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन्होंने तय किया चलो 3 दिन का उत्सव मनाते हैं। तो सबको अपने जो भी भक्त लोग थे तो उन सबों को कहा कल से हम 3 दिन का उत्सव मनाएंगे। अरे महाराज एक पैसा तो है नहीं क्या उत्सव मनाओगे। तो कहते हैं 3 दिन किसी को कुछ खाना नहीं पीना नहीं गाना नहीं कुछ सोना नहीं कुछ नहीं नाना नहीं बस हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे उत्सव उत्सव। तो नाम में मस्ती है और वो मस्ती से खान पान भूल जाते हैं भक्त लोग नो खान पान। तो आइए आगे वाला जो तीसरा अध्याय है अध्याय 3 हिरण्यकश्यप की अमर बनने की योजना। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि मेरा दुश्मन विष्णु कृष्णा उनको मैं मारूंगा मेरे भाई की उन्हें हत्या की है इसलिए मैं रिवेंज लूंगा मैं बदला लूंगा मैं क्या लूंगा रिवेंज बदला लूंगा। तो हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं बलवान हो जाऊं बलवान और इन विष्णु को मैं मारूंगा। तो इसके लिए वो घोर तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाते हैं। तो वहाँ इस ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी भी कुछ कुछ विचलित हो गए और वो स्वयं हिरण्यकश्यप को देखने के लिए गए। तो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप जाते हैं अंदर जमीन में उनने पांव से कुछ वजन से एक पांव से खड़े रहे और हाथ आकाश में दोनों और कड़ी तपस्या करने लगे। इतनी उग्र तपस्या कि सारे लोग पृथ्वी लोग स्वर्ग लोग महर लोग तप लोग जन लोग सारे लोग बहुत दुखी हो गए। तो देवतागण बहुत दुखी हो गए क्योंकि हिरण्यकश्यप की तपस्या से सारे लोग तपित हो चुके। तो पशु पक्षी देव देवी भूमि सब बहुत हैरान हो गए उनके तपस्या से। और उन्होंने पहले तो ऐलान किया ही था उनके चरों को राक्षसों को कि आप सब पृथ्वी पर जाओ और हाहाकार मचाओ। और देवताओं को भी उन्होंने अपना तप से विह्वल कर दिए। तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी देवताओं को सांत्वना देते हैं और ब्रह्मा अपने वाहन हंस वाहन पर बैठ के वहाँ मंदराचल पर्वत जहाँ हिरण्यकश्यप कड़ी तपस्या कर रहे थे उनके शरीर पर एंट हिल बन गई थी। उनका आधा शरीर चींटियाँ खा चुकी थी घोर तपस्या। तो ब्रह्मा जी वहाँ गए और हिरण्यकश्यप को मनाने लगे। तो ब्रह्मा जी साथ में भृगु और दक्ष जैसे महापुरुषों को लेकर हिरण्यकश्यप से भेंट करने लिए गए और हिरण्यकश्यप के ऊपर अपने कमंडल से दिव्य जल का छंटकार किया छिटका लगाया। तो दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने इस ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की कि वह किसी जीव द्वारा न तो किसी ढके या खुले स्थान में मारा जाए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। पहले तो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहता है कि मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही अमर नहीं हूं, तो आप क्या कैसे बनाऊ? मैं एक जीव हूं और मैं ही अमर नहीं हूं, तो आप कैसे? तो हिरण्यकशिपु बुद्धि लगाता है कि ठीक है, अगर अमरत्व का वरदान नहीं दो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं अंदर न मरूं, बाहर न मरूं, हवा में न मरूं, कोई शस्त्र से न मरूं, कोई ह्यूमन बीइंग से न मरूं, कोई देवता से न मरूं, कोई दिन में न मरूं, कोई रात में न मरूं, कोई हवा में न मरूं, कोई अग्नि में न मरूं, वगैरह कई कई कंडीशनें लगाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अभी तो बच जाएंगे, इनका जो त्रास है वो त्रास से तो बच जाएंगे, पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, देवता से न मरूं, जीवित या मृत प्राणी द्वारा मारा जाए। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठा के लिए भी प्रार्थना की तथा उसने अणिमा लगीमा इत्यादि आठों योग सिद्धि, अणिमा लगीमा विसिता इसिता प्राप्ति सिद्धि, सब अष्ट सिद्धि के लिए उन्हें प्रार्थना की। तो ये है ये सारा अध्याय। मैं चाहता था कि मैं ये पढूं। नारद मुनि कहते हैं दैत्यराज हिरण्यकशिपु अजेय तथा वृद्धावस्था एवं शरीर की जर्जरता से मुक्त होना चाहता था। वह अणिमा लगीमा जैसे समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त करना, मृत्यु रहित होना और ब्रह्मलोक समेत अखिल विश्व का एक छत्र राजा बनना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत की घाटी में अपने पांव के अंगूठे के बल भूमि में खड़े होकर अपनी भुजाएं ऊपर किए तथा आकाश की ओर देखते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ की। यह स्थिति अतीव कठिन थी, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने इसे स्वीकार किया। हिरण्यकशिपु की कठिन तपस्या के कारण उसके सिर से अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि अपने धुएं समेत आकाश भर में फैल गई। उसने ऊर्ध्व तथा अधर लोक को घेर लिया, उससे वे सभी अत्यंत गर्म हो उठे। उसकी कठिन तपस्या के बल से सारी नदियां सारे समुद्र उद्वेलित हो उठे। भूमंडल की तरह सतह अपने पर्वतों तथा द्वीपों समेत थरथराने लगे और तारे तथा ग्रह टूट कर गिरने लगे। सारी दिशाएं धधक उठी। हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से झुलसने तथा अत्यंत विचलित होने के कारण समस्त देवताओं ने अपने रहने के लोग छोड़ दिए और ब्रह्मा के लोक को गए, जहाँ उन्होंने सृष्टा को इस प्रकार सूचित किया। हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के प्रभु, हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से उसके सिर से निकलने वाली अग्नि के कारण हम लोग इतने उद्विग्न हैं कि हम अपने लोकों में रह नहीं सकते, अतएव हम आपके पास आए हैं। हे महापुरुष, हे ब्रह्मांड के प्रधान, यदि आप उचित समझे तो इन सारे उत्पातों को जो सब कुछ विनष्ट करने के उद्देश्य से हो रहे हैं कृपा करके रोक दें, जिससे आपकी आज्ञाकारी प्रजा का संहार न हो। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत कठिन तपस्या का व्रत ले रखा है, यद्यपि आपसे उसकी योजना छिप नहीं है, तो भी हम जिस रूप में उसके मंत्रों का निवेदन कर रहे हैं कृपा करके उन्हें सुन लें। तो ऐसी कड़ी तपस्या उनने की तो स्वर्ग के सारे देवी देवताएं स्वर्ग से निकल के ब्रह्मा के पास गए और कई देवी देवताएं पृथ्वी पर आए और अपना स्थान छोड़ा। तो हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इसे ब्राह्मण संस्कृति तथा गोरक्षा को अधिकाधिक महिमा मंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी तरह के भौतिक सुख ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृति दो पर टिकी है, ब्राह्मण और गो, गोरक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा जो आज नहीं है। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण ये गो ब्राह्मण हिताय च गायों के और ब्राह्मणों के हितकारी हैं भगवान कृष्ण, और यही वैदिक संस्कृति का मूल आधार है। तो ये सब नष्ट कर दिया हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या से। देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु दक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे। तो हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यपु है कहाँ, क्योंकि उसका शरीर बाबी घास तथा बांस के डंडों से ढक गया था। क्योंकि हिरण्यकश्यपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चींटियां उसकी खाल चर्बी मांस तथा रक्त चट कर चुकी थी। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। नारद मुनि ने कहा, हिरण्यकश्यपु से ये शब्द कहने के बाद इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, उसके शरीर पर अपने कमंडल से दिव्य चुक आध्यात्मिक जल छिटका, जिसे चींटियां तथा कीड़े मकोड़े ने खा लिया था। इस तरह उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अनुप्राणित किया, फिर से उनमें प्राण पूरे। जो है ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का, त्यों हिरण्यकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्येक इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था, उठ खड़ा हुआ। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं, हिरण्यकश्यपु उवाच, मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मा जी की स्तुति करता है। उनके जीव के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्मा तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से, अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के तीन गुण से युक्त हैं, संपूर्ण जगत का सर्जन पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी ही सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन तीन गुणों के आधार है। ये ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा है और अंत में वो जो वचन मांगता है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं। ब्रह्मा की स्तुति। हालांकि ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा एक भक्त है, लेकिन भगवान की जैसी वो स्तुति कर रहे, श्लाघा। तो ये वरदान मांग रहे हैं, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मन चाहा वर देना ही चाहते हो तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। कोई भी जीव मुझे मार नहीं सकता। मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा न हो, किसी हथियार से न हो, किसी मनुष्य या पशु से भी न हो। आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दे। योग शक्तियां इसीता, वसीता, सिद्धि, रिद्धि शक्तियां दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तो ये है ब्रह्मा से वरदान। और अध्याय चार में ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंकवाद। तो ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक, तो हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया तो बहुत शक्तिशाली हो गया, और सबसे पहले तो स्वर्ग में उनने हाहाकार मचाया। सबको स्वर्ग चाहिए, सुंदरिया चाहिए, सोमरस चाहिए, शराब, नंदनवन चाहिए। तो हिरण्यकशिपु सबसे पहले इंद्रासन, तो हिरण्यकशिपु स्वर्ग लोक में सब देवताओं को वहां से भगाए और सारे देवता पृथ्वी पर आके इधर उधर भागने लगे। तो अपने राक्षस बंधुओं को भी उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप जाओ गायों को मारो और ब्राह्मणों को खत्म करो, वैदिक संस्कृति को खत्म करो और हर एक दिशा में हाहाकार मचाओ, और कोई भी हवन नहीं करेगा। हवन नहीं करेगा तो देवताओं को उनका फल नहीं मिलेगा, तो देवता वैसे ही मर जाएंगे। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण हवन करते हैं, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, आहुतियाँ इंद्र को, सब देवताओं को, विष्णु, शंकर, सबको आहुतियाँ दी जाती हैं। तो ये सब यज्ञ बंद करो। अपने राक्षस बंधुओं को बुला के ये ऑर्डर देते हैं। तो गाय, ब्राह्मण और धार्मिक साधुओं को पीड़ो, पीड़ित करो और सबका वध करो। तो ऐसे हाहाकार मचा दिया इन राक्षसों ने। तो नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे, अतएव जब उसने उनसे वरों की याचना की तो उन्होंने निसंदेह दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतया उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा ने वरदान दिया हिरण्यकश्यपु को। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, और इसलिए वह भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा, भगवान से ईर्षा की। तो विष्णु भक्त भवे देव आसुर्यस्य विपर्जय। तो राक्षसों की परिभाषा है कि जो विष्णु भगवान के भक्त नहीं होते, देवी देवताओं के ज्यादातर भक्त होते राक्षस लोग। यहाँ आपने देखा कि हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की उपासना तपस्या करता है। तो विष्णु भक्त भवे देव, विष्णु के जो भक्त है वो देव देवता है, और असुर असुर्य से विपर्जय, और जो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान का भक्त नहीं है वो असुर है। दोनों वैदिक धर्म को जानते हैं, पालते हैं। यहाँ हिरण्यकशिपु सारा वैदिक धर्म का लेक्चर दिया उनकी भाभी को, उनके भतीजे को, उनकी माँ को, कर्मों की गति बताई। और हम सब जीव हैं, आत्मा है, सारा वैदिक साहित्य का ज्ञान राक्षसों को होता है। और राक्षस मनुष्यों से भी ऊंची होनी गिनी गई है, इसीलिए कि राक्षसों में बुद्धि ज्यादा होती है और राक्षस मनुष्यों से ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। और मैस मैनेजम में भी, सूक्ष्म विद्या में भी वो बहुत मनुष्यों से आगे होते हैं। तो हिरण्यकशिपु ये ब्रह्मा का भक्त था, रावण भी शंकर भगवान का भक्त था। कोई भी राक्षस देखोगे वो कृष्ण विष्णु का भक्त नहीं होगा, इसलिए उनको राक्षस कहा गया है। ज्यादातर राक्षस लोग ही देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि वो राक्षस लोग कृष्ण विष्णु के राइवल, प्रतिस्पर्धी होते हैं। मैं भगवान, ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, प्रतिस्पर्धा। विष्णु कृष्ण की एनिमी, भगवान श्री कृष्ण के ये दुश्मन होते हैं राक्षस लोग। तो यहाँ देखा गया कि हिरण्यकशिपु ये ब्रह्मा का भक्त। हिरण्यकशिपु आगे अपने चरों को, अपने असुरों को ऑर्डर देता है। हिरण्यकशिपु विजेता बन गया, इस महान असुर ने तीनों लोकों, ऊंच मध्य निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों, गंधर्वों, गरुड़ों, सर्पों, चारणों, विद्याधरों, महामुनियों, यमराज, मनुष्यों, यक्षों, पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेत के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे। उसने उन सारे अन्य ग्रहों के शासकों को भी हरा दिया, जहाँ जहाँ जीव रहते थे, और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा। स्वर्ग में सुंदर उद्यान है और उन उद्यान का नाम क्या है? नंदन वन, नंदन वन, नंदन उद्यान। और सुंदर अप्सराएं, उसका भोग देवता करते हैं नंदन वन का। वस्तुस्तः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इंद्र को किक आउट, इंद्र को वहां से भगाया, इंद्रदेव को, और खुद उनके महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था, सुंदर ढंग से बनाया था। संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वही निवास कर रही थी। राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मुगे की थी। मुगा क्या होता है? मुगे पर हीरा मोती माणिक, फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था। फर्श अमूल्य पन्ने, दीवाले स्फटिक की थी और खंभे वैदुर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे। आसन मणियों से जटित थे और जाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। महल की स्त्रियां, जिनके सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणियां मुख थे, वे महल में इधर उधर विचर रही थी। अप्सराएं, सुंदर अप्सराएं इधर उधर विचर रही थी। उनके घुंघरुओं से मधुर झनकार निकल रही थी। स्वर्ग के महलों का यह वर्णन है। और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। वहां महल में सब नौकरानियों का यह वर्णन है। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था। तो सताए गए देवताएं पहले इंद्र को सिर झुकाते थे, अभी हिरण्यकशिपु को, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। हे राजन, हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था। तीक्ष्ण गंध वाली सुरा सोमरस, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सुरात सुरर मा ख्यातम सुरेंद्र लोकम असनंति देवी देव भोगाम। तो सुरा वहाँ की सुरा है सोमरस, अतएव उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर वे चूंकि उसने योग की महा तपस्या की थी और अद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंट लेकर उनके प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा में हाजिर रहते थे। सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना, सब देवी देवता विश्वासु तथा तुमरु नामक दो गंधर्व, तो ये गंधर्व है विश्वासु और तुमरु। तुमरु ये संगीत में पारंगत गंधर्व है, सर्वश्रेष्ठ वीणावाद्य, वीणावाद्य में प्रवीण है तुमरु। शास्त्र में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु के पास नारद मुनि और तुमरु जाते हैं, तो दोनों संगीत वाद्य करते हैं, वीणा बजाते हैं। तो वीणा बजाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण गंधर्व तुमरु से वीणा वाद्य में प्रसन्न होते हैं कि ये वीणा वाद्य में सबसे श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि को ईर्ष्या आई, ईर्ष्या, ही बिकेम एनवियस ऑफ तुमरु। नारद मुनि भी गंधर्व है, वो भी गंधर्व है, विश्वासु भी गंधर्व है, तुमरु भी गंधर्व है, गंधर्व। तो तुमरु पर नारद मुनि को ईर्ष्या आई, तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि ये ईर्ष्या का एक ही इलाज है कि आप तुमरु के पास वीणा वादन सीखो। तो जिनके ऊपर ईर्ष्या हुई भगवान उनके पास भेजते हैं, तो नारद मुनि उनसे शिक्षा लेते हैं तुमरु से। बाद में दोनों फिर से विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वीणा वादन करते हैं। तो इस बार विष्णु भगवान नारद मुनि को नंबर वन स्थान देते हैं। तो ये ईर्ष्या का इलाज, ईर्ष्या का अर्थ है जिनसे हमें ईर्ष्या हो उनको सब सर्वियंट, उनको सबमिट होना चाहिए, तो ईर्ष्या मिट सकती है। तो ये तुमरु विश्वासु तथा तुमरु नामक दो गंधर्व में तथा विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। तो तुमरु भी वीणा वादन से हिरण्यकशिपु की स्तुति, और विश्वावसु नामक गंधर्व भी, विद्याधर अप्सराएं स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, रंभा स्वर्ग की अप्सरा, तो ऐसी सुंदर अप्सराएं, लंबी सेप वाली सुंदर अप्सराएं होती है। तो ये हिरण्यकशिपु की स्तुति करने लगी। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करने के उसकी पूजा करते, तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। तो यज्ञ की आहुति हिरण्यकशिपु ले लेता था, देवताओं को नहीं मिलती थी, इसलिए देवताएं कमजोर हो गए और हिरण्यकशिपु का बल बढ़ने लगा। हिरण्यकशिपु के भय से सुरभि तथा कामधेनु गाय दूध उनके भय से देने लगी, पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करने लगी हिरण्यकशिपु के भय से, और गायें प्रचुर दूध देने लगी। आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूपिणी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोगी हेतु विविध रत्नों की आपूर्ति करती थी। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, द्रुत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। तो पृथ्वी सात समुद्र में और सात द्वीपों से विभाजित है। ये भूमंडल, ये कभी हम देखेंगे भूमंडल का इतिहास। भूमंडल हमारा मायपुर का चंद्रोदय मंदिर, मायपुर चंद्रोदय मंदिर, वहाँ ये भूगोल खगोल प्रैक्टिकल दिखाएंगे। प्लैनेटेरियम, वैदिक प्लैनेटेरियम, भूमंडल वहाँ दिखाया जाएगा। सारा भूमंडल, सात द्वीप और सात सागर। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, ध्रुत, दुग्ध, दही और मीठे जल, सात सागर और सात द्वीप और बीच में जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप ये सुवर्ण जो माउंट मेरू, मेरू पर्वत सोना का, उनकी फुट हिल में ये जम्बू द्वीप है। और ये जम्बू द्वीप में भारत खंड है, भारत खंड। तो ये भारत खंड, ये वहाँ जो जन्म है मनुष्य का, ये जन्म से मनुष्य अपना आत्यंतिक कल्याण कर सकता है, शुद्ध भक्ति कर सकता है। हर जगह ये सुविधा नहीं है। भारत खंड भूतल मा जन्मी जने गोविंद ना गुण गाया रे, तो भरत खंड। तो इंद्र वायु अग्नि के जल वृष्टि करना सुखाना तथा जलना, जो विश्व के तीन विभाग अध्यक्ष अर्थात इंद्र वायु तथा अग्नि के गुण है, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकश्यपु द्वारा निर्देशित होने लगे। समस्त दिशाओं को वश कर दिया और यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यपु असंतुष्ट रहा। इतना सारा स्वर्ग, स्वर्ग की अप्सराएं, नंदन वन जैसा ब्यूटीफुल गार्डन, सुंदर गार्डन, सुंदर सोमरस, सारे ब्रह्मांड का मालिक हिरण्यकश्यपु, ये सब भोग भोगने बाद भी क्या, इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यपु क्या रहा। इसलिए श्रीमद् भागवत में सबसे पहला सवाल ये किया गया। शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को सबसे पहला सवाल ये पूछा, हे महाभाग सुत गोस्वामी, आप आपके गुरुदेव के सौम्य शिष्य हो, स्निग्ध शिष्य हो, इसलिए आपके गुरुदेव ने आपको सब शास्त्रों का सारा निचोड़ सारांश बताया, तो हमें भूरी भूराणी कर्माणी भूरी शास्त्राणी, हमें इन सब बड़े बड़े बहुत शास्त्रों से मतलब नहीं, हमें आप नटसेल संक्षिप्त में कह दो के पुंसाम एकांत श्रेय पुरुष मनुष्य का टॉप मोस्ट आत्यंतिक श्रेय, सबसे ऊंचा श्रेय क्या है, एन आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे मनुष्य संपूर्णतया तुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाए। यहाँ सारे ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का भोग भोगने के बाद यहाँ क्या कहा गया, इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकश्यपु असंतुष्ट रहा, असंतुष्ट दुष्परेण अनलेर्च। इंद्रिय तृप्ति कितनी भी कर लो, कितना धन कमा लो, कितना राज्य कमा लो, कितनी अप्सराएं कमा लो, दुष्परेण अनलेर्च। विषय इंद्रिय तृप्ति जितनी ज्यादा करोगे, इतनी ज्यादा इंद्रियां हमसे अपेक्षा, ज्यादा इंद्रियां और दुष्परेण अनलेर्च, और कभी भी संतुष्ट नहीं होगी और हमें भी कभी भी संतुष्ट नहीं करेगी। असंतुष्ट रहा क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा, गोदास। तो जिनने इंद्रियों मन पर काबू कर लिया, उनने सारे ब्रह्मांड का राज्य कर लिया। क्या? जिन्होंने अपने मन इंद्रियों पर, उनने सारा ब्रह्मांड का राज्य भोग लिया, और उनसे प्लस मच मोर। तो इसके लिए मन को काबू में करने के लिए मंत्र, मन त्राणायते इति मंत्र, और वो भी महामंत्र, मन को मुक्त करने के लिए क्या महामंत्र? हरे कृष्णा। रेडी? मंत्र मन को मुक्त करने वाला 16 माला है डे मिनिमम। तो जिनने 16 माला कर ले, सारे ब्रह्मांड का सुख पा लिया। ये तो भौतिक सुख है, भौतिक सुख पा लिया प्लस मच मोर, सारे ब्रह्मांड का सुख पा लिया। क्योंकि मंत्र मन को मुक्ति देने वाला मंत्र, तो इंद्रियां और मन इनको विषय सुख चाहिए। मन और इंद्रियां जिनकी वश में नहीं है, वो चाहे कितना भी भौतिक सुख उनको हो, लेकिन कभी भी उनको तृप्ति नहीं होगी। दुष्प्रेण अलन लचा मोर मोर अणियोर 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 मोर मोर, और कभी भी तृप्ति नहीं होगी। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकश्यपु ने काफी समय बिताया। अतएव उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, श्राप दे दिया, श्राप दिया। कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, और जय विजय हिरण्याक्ष पहले जन्म में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। कौन आए? देवी देवता है, सब देवी देवता है भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के शरणम अयुर अच्युतम। अच्युत मीन्स विष्णु, कृष्ण। तो कृष्ण के शरण में सब पालका लोका सर्वलोका पालका, ये सब देवी देवताएं और सब लोक पालो सब भगवान विष्णु के शरण में आए, और भगवान विष्णु बाद में उन देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं टूक समय में इन हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं।
हरे कृष्ण।